आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है साइकोलॉजी, और हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। और आपको बता दें कि ये पार्ट टू है, पहले भी हमने इसी टॉपिक पे चर्चा की थी, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर उदयना मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू मैम। नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि हम लोग पहले भी इसमें बात कर चुके हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पार्ट वन में, तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि व्हाट वी मीन एग्जैक्टली बाय द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व भिन्नताएं होती क्या हैं, और फिर हम लोगों ने उसकी नेचर के बारे में बात करी थी। और व्यक्तिगत भिन्नताओं की जब हम बात कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों के आधार पे हम लोग जो हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व में भिन्नताएं जो हैं वो नोटिस करते हैं, ये हमारी आंतरिक हो सकती हैं, बाह्य हो सकती हैं, ये हमें एकदम से देखने को मिल सकती हैं, हम एकदम से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसे ध्यान से देखने के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी भिन्नताएँ वहाँ पर होती हैं। तो आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए पहले हम बात करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। व्यक्तित्व भिन्नताओं में हमने बात करी थी आंतरिक और बाह्य भिन्नताएं, जैसे कि हम लोग साफ साफ देखते हैं हम लोग शारीरिक संरचना में अलग होते हैं, पुरुष और स्त्री की शारीरिक संरचना अलग है, वो भिन्नता है। उसमें भी जब पुरुषों की में आ जाएं हम लोग तो हम देखते हैं कि सबका रंग कलर और आपका जो हाइट है, आपका जो वेट है, भार आपका और आपकी ऊंचाई, ये सब चीज़ें जो है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग होती हैं। आप बहुत रेयर चांसेस होते हैं इवन कि आप देखेंगे कि ट्विन्स में कई बार शारीरिक संरचना तो एग्जैक्टली सेम होती है मगर फिर भी वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि शारीरिक संरचना के साथ साथ हम में और भी बहुत सारी ऐसी अभिवृत्तियां होती हैं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। शारीरिक संरचना की भिन्नता तो आपको हम डिस्कस कर ही चुके थे, उसके बाद हम लोगों ने उन पहलुओं की बात करी थी जो पहलू हमारे जो हैं ऑब्जर्व, डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं होते हैं मगर वो वहाँ पे होते हैं। तो हम लोग जो भिन्नताएँ हैं पहले हम लोग उसके पहलू देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बात करी थी कि बुद्धि, देखिए आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का जो है वो किसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेगा, कोई जो है वो दूसरा उसको बहुत देर में करता है। तो ये बुद्धि जो है वो बुद्धि की भिन्नता है कि किसका आईक्यू जो है वो क्या है। तो जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में व्यक्ति की भिन्नताओं में हम लोग किस पहलू को जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और किस चीज़ को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, या फिर हम ओवरऑल ही किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसका अवलोकन करना चाह रहे हैं, उस केस में भी हमें एक जो है वो पर्टिकुलर लिस्ट जो है बनानी पड़ेगी कि हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति में दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में। हम इसके मापन की हमारे पास अलग अलग विधियां हैं जिनकी हम लोग पिछली चर्चा में बात कर चुके थे। जब हमने बात करी थी बुद्धि की तो बुद्धि का हमें पता है कि बुद्धि जो होती है वो मानसिक आयु डिवाइडेड बाय शारीरिक आयु इनटू 100 के द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल फाइंड कि अलग अलग बुद्धि के जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि का जो मापन है वो अलग अलग आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो बच्चों का हमें लग रहा है कि वो बुद्धि उनकी बहुत तीव्र है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये हमारा मानना है, और कुछ बच्चे जो हमें लगता है कि उनका आईक्यू उतना हाई लेवल का नहीं है। परंतु जब हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर विषय की बात आती है तो एक बच्चा जिसका एक आईक्यू मान जो आपका है आमतौर पर जो आपका सामान्य स्तर पर है, वो बच्चा भी जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेता है। जैसे कि मान लो किसी का मैथ नहीं अच्छा है मगर वो दूसरे किसी सब्जेक्ट में हिंदी में बहुत अच्छा करता है, उसकी हिंदी की कविताएं बहुत अच्छी हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपकी व्यक्तित्व क्या वो पहलू जो आपको उससे भिन्न कर रहा है, क्या है वो आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस चीज में है। तो आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा डेफिनेटली आप उस चीज में अच्छा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा जिसे मैथ अच्छा लगता है पढ़ने के लिए डेफिनेटली उसका मैथमेटिक्स में स्कोर अच्छा आएगा, जिसे हिंदी अच्छी लगती है वो हिंदी में अच्छा करेगा। तो आपका रुचि देखिए, किसी की रुचि खेलने में हो सकती है, किसी की रुचि पढ़ने में हो सकती है, किसी की रुचि गाना गाने में हो सकती है, किसी का रुचि नृत्य करने में हो सकती है। अगर हम नृत्य में जाएंगे तो किसी को वेस्टर्न म्यूजिक वेस्टर्न डांस पसंद आएगा, किसी को आपका क्लासिकल डांस पसंद आएगा। तो यहाँ पे जब हम रुचियों की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारा बात की थी कि जो व्यक्ति की भिन्नताएं हैं वो भिन्नताएं जो है वो उसके रुचियों पर भी डिपेंड करती है। उसके अलावा हमने बात करी थी एटीट्यूड की, जो उसकी अभिवृत्तियां हैं और उन अभिवृत्तियों के सहारे भी जो है हमारा जो भिन्नताएं आती हैं, और उसी का हम लोग जो है वो अलग अलग तरीकों से मापन भी करते हैं। ये मैंने कहा कि सारे पहलू मिलकर जो है हमारे व्यक्तित्व को एक साकार रूप देते हैं और उसी से हमारे व्यक्तित्व की एक पहचान होती है। तो जब हम व्यक्तित्व की पहचान की बात कर रहे हैं तो उसे जो हम नाम देंगे दैट इज द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की प्रकृति, पर्सनैलिटी जो नेचर ऑफ पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग डिटेल में जिसमें क्योंकि बाकी चर्चा हम लोग पिछले सत्र में कर चुके हैं, इसलिए इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आपकी चर्चा आपकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के ऊपर होगी। सबसे बड़ी बात है कि पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं। देखिए मैंने अभी अभी शब्द यूज किया है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। तो जैसे ही हम लोगों के हम किसी के बारे में बोलते हैं कि पर्सनैलिटी, या पर्सनैलिटी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या परसेप्शन आता है, क्या बोध होता है कि एक जो इंसान है मेल फीमेल स्त्री या पुरुष कोई भी हो तो वो देखने में कैसा है, उसकी हाइट कैसी होगी। तो पर्सनैलिटी को सम हाउ लेमैन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमने उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के रख लिया है। जबकि हम बात करें तो पर्सनैलिटी सिर्फ आपका फिजिकल शारीरिक संरचना ही नहीं है, ये हम लोग दिन प्रतिदिन जो भी हम जीवन में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करते हैं उसके अलावा हमारी पर्सनैलिटी मतलब जो आउटर लुक है, उसके अलावा जो हमारा व्यवहार है, जो हम लोगों का एटीट्यूड है, जो हमारे इंटरेस्ट है वो हमारे व्यवहार में झलकते हैं, और उस व्यवहार का जो टोटल जो आपका आउटकम है दैट इज नोन एज द पर्सनैलिटी। अगर हम बात करें मनोविज्ञान के विचार से तो व्यक्तित्व व्यक्ति का अनोखा और अपेक्षाकृत स्थिर व्यवहार है। ये आपकी आउटर शारीरिक संरचना के बारे में बात नहीं कर रहा, नो डाउट कि आपका व्यवहार जो है वो आपकी शारीरिक संरचना को भी इन्फ्लुएंस करेगा, मगर हम शारीरिक संरचना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व का जो अनोखा और अपेक्षाकृत हमारा स्थिर व्यवहार है जो सभी परिस्थितियों में, वो ज्यादातर इन जनरल हम लोग बात करते हैं कि जब आपकी एक जैसी परिस्थितियां होती हैं तो वो एक जैसा बना रहता है, वो आपका डिफरेंट नहीं होता। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग पर्सनालिटी व्यक्तित्व को एक पहलू एक एस्पेक्ट मान के चलें तो व्यक्तित्व के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब आपको लगेगा कैसे, क्योंकि हमने शारीरिक संरचना की तो बात नहीं करी, ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व की आधार पर भी आपकी जो है व्यक्तित्व की भिन्नताएं होती हैं। जैसे कि हमने बात करी अभी अभी डेफिनेशन के हिसाब से कि आपका जो व्यक्तित्व व्यक्ति का अनोखा और अपेक्षाकृत स्थिर व्यवहार है जो सभी परिस्थितियों में और काफी समय तक समान बना रहता है। और जब मैं बात कर रही हूँ काफी समय तक, इट मीन्स कि कई बार ये हमारे जन्म से स्टार्ट होता है और टिल द डेथ वो व्यवहार हमारा वैसा ही रहता है। अब इसे समझने के लिए आप अपने आसपास के लोगों का अवलोकन करिए। आप अपने दिमाग में एकदम से अपने एक दो फ्रेंड्स का नाम घुमा लीजिए, अपने पेरेंट्स का घुमा लीजिए, अपने जो सिबलिंग्स हैं अपने भाई बहन हैं उनके बारे में सोचिए, या फिर आप अपने जो है वो कजन्स के बारे में सोचिए। देखिए, क्या सब वो एक जैसे हैं? क्या सब एक जैसा व्यवहार करते हैं? क्या एक जैसी परिस्थिति में सबका रिस्पॉन्स एक जैसा आता है? नहीं, आप देखेंगे कि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ, मान लेते हैं कि आप अपने किन्हीं दो फ्रेंड्स के साथ बाजार में जा रहे हैं, और अगर आपको सामने से कोई डॉग दिख जाता है, ठीक है, तो आप तीनों के रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा डर लग सकता है डॉग से, किसी को कम डर लग सकता है डॉग से, और किसी को बिल्कुल भी डर नहीं लग सकता। तो ये क्या है? ये पर्सनालिटी है, ये व्यक्तित्व का आपका व्यवहार है। और डरना, नहीं डरना, कम डरना, सिचुएशन के आधार पे डरना, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी जो व्यवहार है आपका, वो आज भी ऐसा हो सकता है और कल भी ऐसा हो सकता है। फिर पर्सनालिटी का ये भी है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चेंज भी होती है। हम ये कह रहे हैं कि काफी समय तक एक समान रहता है, परंतु फिर भी आपके कुछ एक फैक्टर्स जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आपकी आयु। अगर हम उम्र की बात करें, तो एक उम्र में जिस बच्चे को जो है आपके कीड़े मकोड़ों से डर लग सकता है, डॉगी से डर लग सकता है, एक मच्योर जब वो हो जाता है तो उसे डर नहीं लगता है। इसी तरह से छोटे बच्चों को अजनबियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो उनके पास जाते नहीं है, उनसे बात नहीं करते हैं। मगर जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, हमें मच्योरिटी आती है, तो हमारा जो है अजनबियों के प्रति इतना जो है वो डर नहीं बना रहता। तो ये जो हमारे जो भी हमारा एक व्यवहार है किसी चीज सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में, जो हमारे रिस्पॉन्सेज है, वो भी एक व्यक्तित्व भिन्नता जो है वो पैदा करते हैं। और यहाँ पे जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, तो देखिए 1937 में आलपोर्ट ने व्यक्तित्व शब्द की अत्यधिक परिभाषा दी है। इसका मतलब है कि ये परिभाषा जो है वो आपकी बहुत ज्यादा जो है वो मान्य की गई। बहुत ज्यादा जो मनोवैज्ञानिक थे, इनके बाद जितने भी मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने इस परिभाषा को जो है वो तर्कसंगत माना और उसका यूज किया। तो वो परिभाषा क्या थी? इसमें आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो वातावरण से उसके अनोखे समायोजन को निर्धारित करता है। डेफिनेटली, हमने पहले बात किया कि ये हमारा स्थिर व्यवहार है जो सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। अभी भी हम लोग वही बात कर रहे हैं कि ये हमारे प्रणालियों का जो भी गतिशील संगठन है, ठीक है ना, और जो वातावरण, जो हमारे आसपास की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हमें किस तरह से समायोजन करना है उसके लिए वो जो है वो निर्धारित करता है। जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था आपको कि तीन दोस्त हैं, सड़क पे जा रहे हैं, सामने से डॉग दिखता है, तीनों के रिएक्शन अलग अलग हैं। इसका मतलब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के साथ समायोजन करने की तीनों का जो व्यवहार है वो अलग अलग है। अब जिसे डर लगेगा वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, वहां से हेल्प मांगने की कोशिश करेगा। जिसे कम डर लगेगा वो उस तरह से अपना कोई रास्ता चूज करेगा, और जिसे नहीं डर लगेगा वो उसे क्रॉस करके निकल जाएगा। तो ये हम लोगों ने परिस्थिति के साथ कैसे समायोजन करना है, ये हमारी जो पर्सनालिटी है उस पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग देखें, तो देखिए हमने बहुत पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट अप्रोचेस। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव्स हैं मनोविज्ञान को लेके। जैसे कि हमने उसके अंडर बायोलॉजिकल अप्रोच, साइको एनालिटिकल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच एंड कॉग्निटिव अप्रोच पढ़ी थी। तो उसी के आधार पे, क्योंकि हमारी जो है वो अप्रोचेस डिफरेंट हैं, तो डेफिनेटली डिफरेंट अप्रोचेस में जब हम मनोविज्ञान के प्रति हमारा दृष्टिकोण डिफरेंट होगा, तो डेफिनेटली व्यक्तित्व को लेके जो हमारी परिभाषा होगी वो भी डिफरेंट होगी। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि व्यक्तित्व जो है वो एक किसी फैक्टर का रूपांतरण नहीं है, ये जो है वो आपके मल्टीपल फैक्टर्स का रूपांतरण है। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखा है, और जो प्रत्येक दृष्टिकोण व्यक्तित्व को किसी ना किसी पहलू की व्याख्या करता है। जो हम लोग यहाँ पे मैं तीन चार जो है पहलू पर्सपेक्टिव्स जो हमारे दृष्टिकोण है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहा है ये ट्रेट पर्सपेक्टिव की, ट्रेट पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। गुण परिप्रेक्ष्य व्यक्तित्व का अगर वर्णन करें तो ये विभिन्न गुणों के आधार पर करने का प्रयत्न करता है कि किसी पर्टिकुलर इन व्यक्ति में अगर हम लोग शारीरिक संरचना जो हमें दिख रहा है कि वो लंबा है, पतला है, मोटा है, काला है, गोरा है, ठीक है, या एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हम इस चीज पे नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं उन गुणों की जो उसके इंटरनल है। इंटरनल मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उन्हें स्टेज फोबिया होता है, ठीक है, वो शाई नेचर के होते हैं, जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो शाई नेचर के नहीं होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत बातें बनाते हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो बातें नहीं बना पाते। तो ये जो है कि हम लोग उसके क्या गुण हैं, तो हम लोग डिफरेंट ट्रेड्स की बात करते हैं, और डिफरेंट ट्रेड्स की जब वो बात करेंगे तो उन ट्रेड्स के आधार पर जो है वो वहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी को हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे कि जो छोटी छोटी बातों पर शर्माते हैं और नहीं आगे बढ़ पाते, नहीं उनको शर्म महसूस होती है, मतलब शर्म इन द सेंस कि वो शाई फील करते हैं स्टेज पे जाने से या कहीं एक्सपोज होने से, एक्सपोजर के लिए आगे बढ़ने से, तो उस केस में हम लोग उनको क्या कह देते हैं, शर्मीले, ठीक है। सिमिलरली कुछ लोग जो हैं बहुत ओपन होते हैं तो हम कहते हैं ही इज़ वेरी ओपन। तो कुछ लोगों का जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का वो बहुत नैरो होता है तो हम उन्हें नैरो माइंडेड कहते हैं। इसी तरह से अंतर्मुखी और बाह्यमुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब अपने आप में ही सैटिस्फाई रहने वाले, खुद में सेल्फ सेंटर्ड, खुद में अपने में फोकस करने वाले। बाह्यमुखी जो आपके बाहर भी जो है वो चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और उन चीज़ों से जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं उनके साथ वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये ट्रेड्स हैं, तो इसमें ये कहता है कि जो आपके जो भी पर्सनैलिटी है वो आपके जो गुण हैं उन गुणों के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी है। डेफिनेटली यही है, क्योंकि जो आपके गुण होंगे आप उन्हीं गुणों के आधार पर जो परिस्थितियाँ हैं उनसे समायोजन करेंगे। इसके बाद जब हम बात करेंगे, हम बात करेंगे साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव की, गतिशीलता परिप्रेक्ष्य। इसमें जो है देखिए, अभी तक हमने बात करी ट्रेड्स की कि हमारा जो गुण है उनके आधार पे हमारी पर्सनालिटी है, और गुण क्या है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप किसी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप फाइंड कर लेंगे कि इस बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट है, इस बच्चे को आपको इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसे नृत्य में रुचि है। तो ये आपके गुण है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो है साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में क्या बात कर रहा है, ये थोड़ा सा इंटरनल है और आपका अंदर तक, कि जैसे कि अचेतन मन, हमने बात करी थी कि हमारे पास तीन तरह के वो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो यहाँ पे जो ये वाली पर्सपेक्टिव है ये बात करता है उस अचेतन मन की जो एकदम से सामने नहीं दिखता मगर उसका हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, और वो चीज़ें हमें अगर देखनी हो तो हमें उसके लिए बहुत उसे रेगुलर ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसमें जो हम बात करते हैं आपके साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में, इसमें अचेतन मन में जो हमारी द्वंद्व चल रहे होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो हमारे पूर्वावस्थाएँ हैं, जो हमारे तजुर्बे हैं, जो एक्सपीरियंसिस हैं, उनका जो प्रभाव है वो हमारा पर्सनालिटी पे पड़ता है, और उस प्रभाव के आधार पे ही जो है वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा जो है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है बचपन में, पानी से लेके या आग से लेके या ऊंचाई से लेके, तो आप देखेंगे कि टिल द डेथ वो बच्चा जो है वो पानी या आग या ऊंचाई से अपना डर जो है वो निकाल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अचेतन मन में जो एक डर बैठ गया है, उस डर के ने उसकी पर्सनालिटी पे एक अपना छाप छोड़ दी है। इसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक
परिप्रेक्ष्य जो है आपका सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी उस पर्टिकुलर कल्चर के लोगों से तो मेल खाती है, मगर किसी दूसरे कल्चर के लोगों के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो कोई कॉमन अगर कोई आपके एस्पेक्ट्स हैं तो वो सामने आ सकते हैं, मगर आप देखेंगे कि वो अलग होंगे। जो पर्सनालिटी है वो अगर हम देखें इन एज ए होल देखें तो वो एक ग्रुप की जो है वो कुछ चीजें एक जैसी हो सकती हैं, बहुत बारीकी में देखेंगे तो एक ग्रुप के अंदर पहले तो देखिए क्या डिफरेंसेस हैं कि आपको ग्रुप में डिफरेंसेस हैं तो एक पर्टिकुलर आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो डिफरेंट आपकी ट्रेट्स हैं जो आपके कल्चरल या पर्सनल जो भी हैं वो सेम होंगे। उसके बाद जब हम विद इन द ग्रुप देखते हैं तो उस केस में आपके फिर इंडिविजुअल भी डिफरेंसेस होंगे, तब आपके कल्चरल सोशियो कल्चरल तो आपके सेम हैं मगर आपके इंडिविजुअल जो हैं वो जैसे इंटरेस्ट की बात होगी, एटीट्यूड की बात होगी, एप्टीट्यूड की बात होगी वो अलग होंगे। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य की तो यहाँ पे जो आपका पर्यावरण है जिसमें आप पले बड़े होते हैं उसका एक खास महत्व होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे परिवार में अगर कोई जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहारी अगर नहीं है वो शाकाहारी हैं तो डेफिनेटली उस घर के बच्चे भी शाकाहारी होंगे, एक्सेप्शनल हमेशा होते हैं, अपवाद को हम छोड़ रहे हैं, अपवाद होने के पूरे चांसेस हैं, मगर इन जनरल ज्यादातर हम देखते हैं कि मांसाहारी परिवार के लोग मांसाहारी होते हैं बच्चे और शाकाहारी परिवार के बच्चे शाकाहारी होते हैं। तो ये किसका इम्पैक्ट है, ये सोशियो कल्चर जो है आपका उसका वहां पे इम्पैक्ट आया। इसी सिद्धांत की दृष्टि से जो हमारा व्यक्तित्व है और व्यवहार के जो प्रतिमान है वो दूसरों से अंतःक्रिया और सामाजिक सांस्कृतिक मानकों को अपनाने से अधिकृत होते रहते हैं। कैसे बनती है हमारी पर्सनालिटी, जिस पर्टिकुलर एक सोसाइटी में, जिस पर्टिकुलर हम समाज में या संस्कृति के साथ जब हम लोग इंटरैक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उस इंटरैक्शन के चलते चलते हम लोग जो हैं, जो हमें जिन चीज़ों के साथ हम जस्टिफाई होते हैं, जिन चीज़ों के साथ हम वेरीफाई होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग अपने में इनकल्केट करते चले जाते हैं। द लास्ट वन इज द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रत्येक में निहित वृद्धि और स्वतंत्रता की असीमित क्षमता पर बल देता है। ये कह रहा है कि जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है इसमें जो अपने प्रति है, जो भी हमारी जो कुछ ट्रेड्स इस तरह से है जैसे वृद्धि है, हमें बढ़ना है आगे, और बढ़ने की जब बात हो रही है तो इट्स नॉट थिंग लाइक कि सिर्फ हम लोग अपने फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने को लेके है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे एटीट्यूड हैं उसमें बढ़ने की बात हो रही है, और इसमें जो है आशावादी और जीवन के सकारात्मक पहलुओं और क्षमताओं पर बल दिया जाता है। अब देखिए हम लोगों ने हमेशा बात करी है कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्ति के भिन्नताएं, व्यक्तित्व में भिन्नताएं हैं, और उसके भिन्नताएं होने के लिए अगर हम बाहर जाएंगे तो हम लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कि हमारी शारीरिक संरचना में किस तरह से भिन्नताएं हैं। आप देखते हैं कि पर्टिकुलर एक रीजन के लोगों की शारीरिक संरचना दूसरे पर्टिकुलर रीजन के लोगों की शारीरिक संरचना से अलग होती है, जबकि बेसिक आपका फिर भी सेम ही है। और उसके बाद हम आंतरिक की बात करते हैं, आंतरिक में आपकी आईक्यू की बात करी हमने, इंटरेस्ट की बात करी हमने, एटीट्यूड की बात करी, एप्टीट्यूड की बात करी, पर्सनालिटी की बात करी और सबके मूल्यांकन की बात करी। तो इसी तरह से अगर मुझे व्यक्तित्व की भी अगर मूल्यांकन करना है, पर्सनालिटी का भी मूल्यांकन करना है, तो जिस तरह से हम लोग इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपकी क्रिएटिविटी, मतलब देयर आर नंबर ऑफ ट्रेड्स, हम हर एक ट्रेड को जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं विद डिफरेंट इन्वेंट्रीज। तो सिमिलरली हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व की मूल्यांकन की क्या क्या विधियां हैं, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के मूल्यांकन के क्षेत्र में तो एक प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार द्वारा उजागर विभिन्न विशेषताओं की प्रकृति और तीव्रता पर अधिकतम केंद्रित रहता है। और अगर हम बात करें कि हम किस तरह से करेंगे तो मेन जो है वो तीन है, तीन श्रेणियों में हमने इसे विभाजित किया है। वन इज अ ऑब्जेक्टिव या फिर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। आपके वस्तुनिष्ठ या व्यक्तित्व के स्वयं वर्णित मापक, दूसरे हैं व्यक्तित्व के प्रक्षेपण या अप्रत्यक्ष मापक, मतलब कि आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक, और फिर लास्ट में आ जाता है व्यक्तित्व के परिस्थिति जन्य मापक। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ वस्तुनिष्ठ या व्यक्तित्व के स्वयं वर्णित मापक, ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, पहली बात है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये आपके कोई बहुत ज्यादा बड़ा वो सब नहीं होता, इसमें आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ आपके स्टीक आंसर होते हैं और उन स्टीक आंसर्स को आप देते हैं और उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशंस करके जो वहाँ पे आपके रिजल्ट्स जो है वो निकाल लिए जाते हैं। यहाँ पे इसे हम लोग देखिए, नाम से देखिए आप, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, व्यक्तित्व के स्वयं वर्णित मापक, मतलब कि जिस इंसान के व्यक्तित्व को हम लोग जो है मूल्यांकन करना चाह रहा है, वो अपने व्यक्तित्व के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम उस व्यक्तित्व के जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में एक धारणा जो है वो वहाँ पे बनाएंगे। अगर हम बात करें कि जो वस्तुनिष्ठ की बात है तो किस तरह से होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मगर जैसा कि मैं अभी बता रही हूँ आपको, तो वस्तुनिष्ठ है इसमें जो है कि आप जो है वो प्रश्नावली, मतलब कि मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में क्या जानना है, उसको चीज़ को हम लोग अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चनर्स बनाते हैं और उन क्वेश्चनर उस क्वेश्चनर में उस प्रश्नावली में हम लोग जो है वो प्रश्न करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेट से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड, ताकि उसके जो उत्तर हमें मिले, जो आंसर हमें मिले, उनके आधार पे हम उसके व्यक्तित्व की एक धारणा जो है वो बना पाए। प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का वो जवाब देते हैं। प्रश्न दो तरह से होता है, या तो मैंने उन्हें एक प्रश्न पूछा और उसको आंसर दे दिए, जैसे आप MCQ करते हैं तो चार ऑप्शन दे दी, पांच ऑप्शन दे दी, दो ऑप्शन दे दी, हाँ या ना, ठीक है, उसने वहां पे जवाब दे दिया उसके बारे में, और बाद में हम लोगों ने उसका जो भी स्कोर था वो करके उसको इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि उसका क्या व्यक्तित्व है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ओपन एंडेड होता है, आपने कुछ प्रश्न पूछा, आपने उन्हें चॉइस नहीं दी, ठीक है, अब आपने चॉइस नहीं दी तो वो अपने हिसाब से उसका आंसर लिखेगा, उस एक एक आंसर को आपको ध्यान से पढ़ के फिर उसके व्यक्तित्व के बारे में एक धारणा बनानी होती है। जो बात हम प्रश्नावली की कर रहे हैं, तो प्रश्नावली दो तरह की हो सकती है, एक तो आपकी लिखित मतलब रिटर्न जिसे हम क्वेश्चनर कहते हैं, दूसरा आपका मौखिक जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू की बात हम बात करेंगे तो इंटरव्यू में हम लोग जब कर रहे हैं, आपका साक्षात्कार की बात है, उसमें भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं उसमें भी, कि आप जो है एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करें, कि आप पहले से ही मान के चलें कि मुझे इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन पूछना है, आपने उन्हें ऑप्शन, आप जैसे हमने अभी बात करी प्रश्नावली की, आप उनसे ओपन एंडेड दे सकते हैं या क्लोज एंडेड जो उत्तर है वो मांग सकते हैं, परंतु वो आपकी चॉइस है आपकी, मगर आप साक्षात्कार जब कर रहे हैं तो आप वहां पे या तो क्वेश्चंस वहां पे आपने जो है बना लिए हैं, आपने बस वही पूछने हैं, या फिर आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है जिसमें आप क्या करेंगे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने उत्तर दिया, अब जो आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे दैट इज नॉट फिक्स्ड, उसके आंसर देने पर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, मगर फिर भी यहाँ पे एक टेंटेटिव क्वेश्चंस की लिस्ट हम लोग अपने साथ रखते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन हम ले सके। नो डाउट कि प्रश्नावली जो है वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए, और किसी भी तरह का जो आपका इंटरेस्ट है, एटीट्यूड, देखिए आपने देखा होगा कि इन सेवरल केसेस हर एक चीज में, चाहे मैं इंटरेस्ट निकालना हो, एटीट्यूड फाइंड करना है, एप्टीट्यूड फाइंड करना है, क्रिएटिविटी फाइंड करना है, या समथिंग एल्स, कुछ भी करना है, उन सब केसेस में हम लोग जो है वो क्वेश्चनर प्रेफर करते हैं। क्वेश्चनर प्रेफर करने का तरीका ये है कि एक तो जो बच्चा पढ़ रहा है उस क्वेश्चन को, वो उसे अच्छे से ग्रास्प कर पाता है कि क्या पूछा जा रहा है, और क्योंकि वो उसे पता है कि नोबडी इज लुकिंग, उसे कोई देख नहीं रहा है, कोई उस ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, और वो जो उसके आंसर्स हैं उसको किसी तरह से पर्सनल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो आराम से वहाँ पे उत्तर दे सकता है। तो वो ये सबसे सक्सेसफुल जो है वो आपकी टेक्निक मानी जाती है। मगर इस टेक्निक की जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो जो है वो आपका आंसर सही दे। वो वहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है, कुछ जो उसकी बातें हैं उन बातों को वो छुपा भी सकता है, या फिर वहाँ पे आपको झूठी सूचना दे सकता है। अब उसका क्या ड्रॉबैक होगा, जब हमारी सूचनाएं झूठी होंगी, सूचनाएं गलत होंगी, तो उस पर्टिकुलर केस में जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम भी यही आएगी कि आपका जो इंटरप्रिटेशन के बाद रिजल्ट, जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक धारणा बनेगी, वो धारणा आपकी स्टीक नहीं होगी। हालांकि हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इसमें जो बहुत फेमस है देखिए वो है आपका न्यूरोटिज्म एक्स्ट्रावर्जन ओपननेस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये रिवाइज्ड है, ठीक है। इसका छोटा जो नाम है दैट इज NEOPIR। ये परीक्षण वर्तमान में व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विश्व में प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रसिद्ध तकनीक है। इसमें आपके 5 आयाम जो हैं और उन 5 आयाम से रिलेटेड जो है वो वहाँ पे क्वेश्चंस हैं, और वो कौन कौन से हैं, आपके मनोबोधिता आ गई, आपकी बहिर्मुखता है आपकी, और अनुभव का खुलापन, स्वीकारिता और अंतःकरण की शुद्धता। ये 5 जो हैं पर्सनालिटी के आपके जो आयाम हैं इनको ये यहाँ पे जो है इवैल्यूएट करते हैं। इस परीक्षण का अगर निर्माण की बात करें कि तो किसने करा था, इसका निर्माण जो किया था वो कोस्टा और मैककरी ने 1992 में किया था। और मैं जैसा पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हमें व्यक्तित्व के मूल्यांकन की अगर बात आती है तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाती है वो यही इन्वेंट्री है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसे हम लोग जो है व्यक्तित्व के 5 तत्व नमूना पर जो है वो स्थापित है, 5 फैक्टर मॉडल। ये आपके व्यक्तित्व के 5 आयामों पर अंक प्रदान करती हैं। आप 5 आयामों को अलग अलग भी इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक आयाम का आप में कितना अंश है, और फिर आप एज ए होल ओवरऑल भी एक पर्सनालिटी जो है वो उसे वहाँ पे इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है 16 व्यक्तित्व तत्व प्रश्नावली, जिसे हम 16 PF भी कहते हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। अगेन इट्स ए क्वेश्चनर जो ऑब्जेक्टिव होगा और जिसमें क्वेश्चंस होंगे, यू हैव जस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस। ये परीक्षण मूल रूप से रेमंड बी कैटल, कैरन कैटल और हीदर ईपी कैटल के द्वारा 1949 में विकसित किया गया था। ये आपका 1949 में विकसित किया था, और उसके बाद इसका एज पर द रिक्वायरमेंट और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बास्ट हो रही है, जिस तरह से चीज़ें रिसर्चेज हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षण का सबसे पहले 1956 में रिव्यू हुआ, फिर 1962 में, और फिर 1967-69 में, और 1998-93 में। ये 4 बार संशोधित हो चुका है, जबकि 1994 में इसका 5वां संशोधन हुआ जो कि कॉन और रिक ने किया था। ये जो परीक्षण है आपका 16 PF के नाम से प्रसिद्ध है, और ये 16 या 16 से ऊपर ही, इससे छोटे बच्चों पे नहीं काम करता, ये 16 या उससे ऊपर के आयु वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे 16 PF क्यों कहा जाता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है 16 व्यक्तित्व तत्व पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के जो 16 गुण है उनके बारे में इस प्रश्नावली में प्रश्न किए जाते हैं। और उसकी ही वहाँ पे इंटरप्रटेशंस की जाती हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपका सामाजिक साहस, प्रभुत्व, सतर्कता, भावनात्मक स्थिरता, नियम, चेतना, आपका बहिर्मुखता, चिंता, कठोर मानसिकता, स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण, इस तरह के जितने भी आपके 16 आपके इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे जो है वो नोटिस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि आपका जो है वो व्यक्तित्व जो है मापने के लिए बड़ी मात्रा में और भी बहुत सारी हमारे पास इंडिया में भी बहुत सारी इन्वेंट्रीज या क्वेश्चनर, हम लोग प्रश्नावली जिनकी बात कर रहे हैं वो वहाँ पे इन्वेंट की गई हैं, जिनमें से कुछ कुछ जो है संशोधित संस्करण हैं जिनके बारे में सिर्फ हमने नाम बताए हैं। मोहसिम और हुसैन द्वारा वेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, देखिए इसमें क्या चेक कर रहे हैं, पर्सनैलिटी का कौन सा फैक्टर, एडजस्टमेंट। सिंह और जैमवार द्वारा मैस्लो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी इन्वेंट्री, कि कितना सिक्योर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा। हिंदी में सिंह द्वारा माइस्लो पर्सनालिटी इन्वेंट्री ऑफ आइजेक और जोशी, और मलिक द्वारा जोधपुर पर्सनालिटी इन्वेंट्री, उसमें उन्होंने ये हमें मैनुअल्स में पता लगता है कि वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री में किन किन एस्पेक्ट्स को जो है वो वहाँ पर लेते हैं। जब मैं बात कर रही थी व्यक्तित्व के वस्तुनिष्ठ या स्वयं परिणित पापक की, तो मैंने आपसे कहा कि जब भी हम इसे लगाते हैं, नो डाउट ये आपका लगाने में इजी होता है, इंटरप्रिटेशन करने में भी इजी होता है, ये जो भर रहा होता है उसके लिए भी इजी हो रहा है, जिसे जिसका व्यक्तित्व जांचा जा रहा है उसके लिए भी आसान रहता है, और जो व्यक्तित्व जांच रहा होता है उसके लिए भी आसान रहता है। परंतु इसकी कुछ कमियों के कारण एक जो वहाँ पर देखा जाता है, इसके साथ साथ जो है वो दूसरी हम लोग लेते हैं, दैट इज द व्यक्तित्व के प्रक्षेपण या प्रत्यक्ष मापक, प्रोजेक्टिव और इनडायरेक्ट मेजर्स, कि कुछ चीजें जो है वो डायरेक्ट नहीं करेंगे ऑब्जर्व, उन्हें हम इनडायरेक्ट करेंगे। और प्रोजेक्टिव, तो प्रोजेक्टिव जो है वो प्रक्षेपण जो है उस केस में हम डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रहे हैं किसी से, इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं। इसमें सबसे जो फेमस था वो दैट इज अ रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट। उसमें क्या है, अलग अलग से जो है वो पिक्चर्स हैं, ऐसे मतलब धब्बे जैसे हैं जो दिखाए जाते हैं बच्चों को, जो भी जिनके व्यक्तित्व को हम जांचना चाहते हैं उनको, और वो उसके हिसाब से अपनी नरेशन करता है। नो डाउट इट्स ए टिपिकल, थोड़ा सा टफ भी होता है क्योंकि हम लोगों, ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, और साथ में उसके देखने के साथ साथ जो है वो आपका आपको वो इंटरप्रिटेशन बिना सब्जेक्टिव हुए, ये सोचना नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको वो सो देखना है कि क्या दूसरा कह रहा है। तो वो वहाँ पे जो भी अपनी डेफिनेशंस वहाँ पे देंगे उसको ऑब्जर्व करना है, उसको नोट करना है। इसके अलावा इनडायरेक्ट मेजर्स में आप लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो आंसर होगा, जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया को नोट करते हुए जो है वो वहाँ पे हम लोग वहाँ उसके जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को वहाँ उसकी धारणा वहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं स्ववर्णित के विपरीत जो है ये उससे उल्टा है, वहाँ पे जो है कि जो भी उसने खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जबकि हम उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। इसमें यहाँ पे एक व्यक्ति को संरचित परीक्षण उद्दीपक प्रदान किया जाता है, और उसके द्वारा जो उसका प्रतिक्रिया आएगी उस प्रतिक्रिया को वहाँ पे नोट किया जाता है। यहाँ पे जो प्रक्षेपण है इसमें के रूप में व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिक्रिया उसके व्यक्तित्व की प्रकृति को प्रदर्शित करती है, और ये जैसे कि हमने पहली बात करी है व्यक्तित्व के वस्तुनिष्ठ या स्वयं वर्णिक मापक से, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टिपिकल है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का, थैमेटिक जो आपका एपरसेप्शन टेस्ट है, और रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंसिस ब्लैंक है, मतलब कि आपने सेंटेंस आधा छोड़ दिया, वो किस तरह से उसे कंप्लीट करता है इस चीज पे वो मैटर करता है। ये एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। इसके अलावा जो है वो व्यक्तित्व के परिस्थिति जन्य या अवलोकनात्मक मापक, सिचुएशनल और ऑब्जर्वेशन मेजर्स, मतलब कि अब ना हम उससे डायरेक्ट कुछ पूछ रहे हैं, ना हम उससे इनडायरेक्ट कुछ पूछ रहे हैं। अब क्या है, अब हम लोग सिर्फ उसे एक परिस्थिति प्रोवाइड करते हैं और उस परिस्थिति में उसका पर्टिकुलर अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग उसे बाह्य अवलोकन करें कि हम लोग बस दूर से उसे देखते रहें व्यक्ति को जिसकी हमें पर्सनैलिटी को चेक करना है, या फिर हम लोग उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन होती है या नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन होती है, वट एवर इट मे बी, ये आपको एक सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है और आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप जो ऑब्जर्व करेंगे उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है वो आप एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व के बारे में जो है उसके जो आपकी अवधारणा है वो वहां पे निकल के आएगी। ये जो है वो व्यक्तित्व को मापने की दूसरी तकनीकों में जानबूझकर तैयार की गई परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। देखिए, एक अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, एक प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। जो अनुकूल परिस्थितियों में लोगों का जो है वो अपना ऑटोमेटिकली एक जैसा ही व्यवहार चला रहता है, तो वहां पे उसकी पर्सनैलिटी को बाहर निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल परिस्थिति वहां पे बनाई जाती है। कुछ सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की जाती हैं कि जो उसके अचेतन मन में जो द्वंद है, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो निकल के बाहर आए, तो हम लोग जज कर पाए कि उसकी जो पर्सनैलिटी है या जो उसकी परेशानी है। ये सब चीजें हम करते क्यों हैं, क्योंकि जो वो अपने जीवन के साथ समायोजन नहीं कर पा रहे होते हैं उस टाइम में हमें ये जांचना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट आर द रीजंस, क्या वो व्यक्तित्व के क्या कारण हैं जिनकी वजह से वो समायोजन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो ये आपका एक तीसरी तरह की सिचुएशन है जिसमें हम लोग जो है उसके पर्सनालिटी को जांचने के लिए एक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। अगर परिस्थिति परीक्षणों में से सर्वप्रथम जो आपका परीक्षण है वो हार्ट स्टोन ने और उनके सहयोगियों द्वारा 1928, 1929 और 1930 में करेक्टर एजुकेशन इंक्वायरी विकसित किया गया। ये परीक्षण सत्यता, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को नापता है। मतलब मैंने कहा कि हर एक क्वेश्चनर का अपना एक इम्पैक्ट रहता है, इसका था सत्यता, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण। तो ये जो आपकी परिस्थितिक मापक द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो आपका प्रकाश में आए, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ स्टैटिकल सर्विसेज ने इनका प्रयोग करके कठिनाई के समय में समुद्र पार नियुक्ति के लिए फौजी अधिकारियों का चयन किया। भी कौन किस पर्टिकुलर चीज के लिए वहाँ पे फिट बैठेगा उसके लिए इस चीज का यूज किया जाता है। पर्सनालिटी जो मापन है या आपके जो व्यक्तित्व भिन्नताएं उनके जो मापन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे आपका साक्षात्कार होता है तो आपको किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप सक्षम है या नहीं है, आपका व्यक्तित्व उसके साथ मैच करता है या नहीं है, आपके इंटरेस्ट, आपके एप्टीट्यूड जो है वो पर्टिकुलर किसी कार्य के करने के लिए सहयोगी होंगे या नहीं होंगे, वो सब जांचने के लिए जो है वो हमारे को व्यक्तित्व की जानकारी होना जरूरी है। और व्यक्तित्व की जानकारी के लिए ही हम लोगों के पास डिफरेंट जो है वो अपनी मापन की विधियां हैं। व्यक्तित्व भिन्नताओं में हम लोग जो बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात करी कि आंतरिक और बाह्य अलग अलग होती हैं, जिसमें हम लोगों ने बाह्य की बात करी शारीरिक संरचना की, और आंतरिक में हमने इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी आईक्यू है, आपकी पर्सनैलिटी है, उनके बारे में डिस्कस किया। आप खुद भी अपने आप में आसपास में अवलोकन कर सकते हैं, यू विल फाइंड कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही तर्कसंगत है। नमस्कार।